हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दादी बोली, फिलहाल होटल जाने की बात आइंदा अपने मुंह पर मत लाना, तुम्हें यहीं रहना होगा, ठीक है? ये बोलकर दादी उठी और बोली, तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारा सामान सिद्धार्थ के बराबर वाले कमरे में लगवा दिया है, तो तुम जाओ जाकर आराम करो। तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवा देती हूँ। ये बोलकर दादी चली गईं। दादी के उठकर जाने के बाद सिद्धार्थ अचानक उठा और सीधा उठकर उसने अपने सीधे हाथ से रणविजय का गला दबोच लिया और बोला था, किस लिए आया है तू यहाँ? देख, तू दादी को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से आने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? याद रखना, अगर तूने कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश की, सिद्धार्थ खुराना तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेगा। रणविजय, एक बात कान खोलकर सुन लो और उससे दूर रहना, खबरदार अगर तूने उसके करीब जाने की कोशिश की तो। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना गुस्सा, अपना जलन सब कुछ रणविजय के ऊपर उतारा, अब तो रणविजय बड़ी ही शानदार मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ के हाथों को अपने गले पर से हटाकर बोला था, शांत मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, शांत। तुम इतनी ज्यादा ओवर हाइपर क्यों जाते हो भाई? अरे शांत हो जाओ भाई, मैं तो नॉर्मल सा बंदा हूँ। दादी के कहने पर यहाँ लड़की देखने के लिए आया हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, लड़की मुझे भा गई है भाई, लड़की मुझे जम गई है, और अब मैं तो उसी से शादी करूँगा। अब मेरी होने वाली बीवी से भला तू मुझे दूर होने के लिए क्यों कह रहा है? अब जैसे ही रणविजय ने पूरी तरह से एटीट्यूड में जवाब दिया, अब तो सिद्धार्थ के सर की नसें तक दिखाई देने लगी थीं। इसका मतलब साफ था कि वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो जानता था कि दादी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ही रणविजय इस तरह की एक्टिंग कर रहा है, और वो तुरंत उसकी ओर देखकर बोला था, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे झलक की जिंदगी में कभी भी शामिल नहीं होने दूंगा। अगर तुझे लगता है कि तू दादी को बेवकूफ बनाकर झलक की जिंदगी में शामिल हो जाएगा, तो ये तेरी गलतफहमी है, समझा? उसे धमकाकर सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर सिद्धार्थ ने खुद से अपने कमरे की चीजों को इधर फेंकना शुरू कर दिया था। बार बार उसकी आंखों के सामने झलक का उसकी गोद में सवार होकर आना याद आ रहा था, और वो गुस्से से झल्लाते हुए बोला था, बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे, मैं तुम्हें बताता हूँ सिद्धार्थ क्या चीज है। जब मैंने तुम्हें बड़ी ही आम शब्दों में ये बात समझा चुका था कि तुम्हारे ऊपर किसी भी आदमी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, हमेशा तुम मुझे इग्नोर करती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिद्धार्थ खुराना की नरमी का तुम कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठाती हो। सिद्धार्थ के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। तभी रोनित का नोटिफिकेशन आया और उसने बताया, उन दोनों लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके बचने के चांसेस काफी कम है। ये सुनकर सिद्धार्थ कोल्ड वॉइस में बोला था, याद रखना, उन लोगों के लिए बेस्ट डॉक्टर हायर करो, उन लोगों की मौत इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए। रोनित ने यह सुनकर गहरी सांस ली थी और ओके बॉस बोलकर फोन काट दिया था। वही सिद्धार्थ मन ही मन बुदबुदाते हुए बोला था, आखिरकार सिद्धार्थ खाना की चीज पर इस तरह से बुरी नजर डालने वालों को सिद्धार्थ खाना क्या सजा देता है, इसके बारे में अब पूरे जमाने को देखने का वक्त आ चुका है। वैसे भी सिद्धार्थ खुराना ने काफी टाइम से किसी का शिकार नहीं किया था, और अब वक्त आ गया था उसके किसी न किसी का शिकार करने का। इस वक्त सिद्धार्थ पूरी तरह से गुस्से से झुलस रहा था, और बस जल्द से जल्द वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं पूरी तरह से झलक पर उतारना चाहता था। वही झलक जो किसी वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। उसका दिमाग इस वक्त जो उसके साथ हुआ उसको लेकर शुरू से चल रहा था। वो सोचने लगी थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। सुनार की दुकान से निकलने के बाद पैसे लेकर क्लब गई। उस वक्त क्योंकि झलक को केवल सिद्धार्थ के अपार्टमेंट से अपना सामान लेकर वापस नीचे आना था, तो अपने पैसे उसने प्राची को दे दिए थे और उसे बता दिया था कि वो वापस आकर उससे पैसे ले लेगी। लेकिन इस बीच उसकी किडनैपिंग हो गई थी, और वो समझ चुकी थी कि जरूर इसके पीछे भी ओबेरॉय परिवार का हाथ होगा, और वो आकांक्षा अगर रात के वाहन मौजूद थी तो जरूर वो ये देखने के लिए आई होगी कि मैं ठीक हूँ या नहीं। और जिस तरह से वो बातें कर रही थी, जरूर आकांक्षा ने ही उन गुंडों को झलक को अगवा करने के लिए बुलाया होगा। इस वक्त झलक अपना दिमाग जोरों से चला रही थी और सच जानना भी चाहती थी। फिलहाल अब झलक जल्दी से बाथरूम में चली गई थी और अपने आप को आईने में देखने लगी थी। उसके गोरे बेदाग चेहरे पर उन लड़कों की मार पिटाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए वो सारा दृश्य याद करके झलक के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सोचने लगी थी कि जिस तरह से रणविजय ने उसे बचाया, क्या ये सब सही था? सिद्धार्थ भी वहां गया था, लेकिन तब तक रणविजय उसकी जान और इज्जत बचा चुका था। झलक के दिलो दिमाग में काफी उलझने चल रही थी। वो सोच रही थी, भले ही उसे रणविजय ने बचाया हो, लेकिन फिर भी वो रणविजय के साथ कम्फर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी। उसको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिलहाल उसने जल्दी से फटाफट से अपने आप को कपड़ों से आज़ाद करके शावर लिया और अपना ढीला सा पजामा और उसके ऊपर एक टॉप पहन लिया था। और फिर उसने सोचा कि दादी उसके लिए ज़रूर फ़िक्रमंद हो रही होगी, इसीलिए देर न करते हुए वो बाहर आ गई। तब तक दादी डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा चुकी थी
और झलक को देखकर बोली थी, ये क्या बेटा, तुम बाहर क्यों आई? तुम्हें इस वक्त आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब दादी की बात सुनकर झलक बोली थी, दादी आप तो जानती हैं ना कि मेरे शरीर को चैन ही कहाँ है, और फिर आपको जब से मैंने आपका उदास चेहरा देखा है तब से तो मेरा आराम करने को भी दिल नहीं चाह रहा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आराम कर सकती हूँ? ये बोलकर झलक ने दादी को हल्के से स्माइल दिखाकर कहा था, ताकि दादी झलक को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दादी उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार करने लगी है। फिलहाल दादी ने तुरंत झलक को देखकर कहा, तुम नहीं जानती बेटा, तुम्हें उस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीत रही थी। आखिरकार उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? हम जानते हैं, जरूर किसी ने उन लोगों को भेजा होगा। आखिर हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कब किस तरह से गिर सकता है। दादी झलक को लेकर काफ़ी हद तक परेशान सी थी। तब झलक अपने परिवार पर अपने शक के बारे में दादी को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और बात बदलते हुए आगे बढ़कर दादी के माथे को चूम कर बोली थी, अरे दादी क्या हो गया आपको? आप दुखी हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती मेरी क्यूट सी दादी पर इतनी सी भी परेशानी आए। झलक ने जैसे ही थोड़ा सा मुंह बनाकर ये कहा, दादी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और बोली, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे तू हर सिचुएशन में जीना सीख लेती है। अगर किसी को जीना सीखना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तुझसे सीखना चाहिए। सच में मेरी बच्ची तू महान है। ये बोलकर दादी ने एक बार फिर झलक को गले से लगा लिया और सिद्धार्थ और रणविजय, जो कि आगे पीछे ही अपने कमरे से निकले थे और एक दूसरे को टशन और खतरनाक लुक देते हुए सीधा हॉल में आ गए थे। वो सारे दृश्य अपनी आंखों से देख चुके थे। वही झलक को ठीक देखकर सिद्धार्थ की आंखों को एक ठंडक सी पहुंची थी। वही रणविजय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो कि झलक को देखकर उसकी आंखों में बढ़ जाया करती थी। फिलहाल अब जल्दी से आगे बढ़कर रणविजय ने झलक को देखकर कहा, आप ठीक तो है ना? देखिए, अगर आपको कहीं कुछ भी चोट लगी है तो हम अभी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तब झलक हल्का मुस्कुराकर रणविजय को बोली, आप परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बीच झलक ने सिद्धार्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बिना सिद्धार्थ की ओर देखे रणविजय के साथ सीधा खाने के लिए बैठ गई थी।